ओम शांति। आप सभी बाबा के सिद्धि स्वरूप बच्चे बैठे हैं, सिद्धि स्वरूप है ना। बाबा कहते हैं सफलता मेरे बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता के लिए भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है। बाबा के बच्चे बने और सफलता पीछे पीछे हर कर्म में आती जाती है, लेकिन सफलता का आधार यथार्थ विधियां हैं। विधि से सिद्धि है, हमारी रिद्धि सिद्धि नहीं है। दुनिया के अंदर जो आज चमत्कार करने वाली आत्माएं हैं, लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। बाबा के घर में अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोई ऐसा चमत्कार नहीं है जिसके कारण इतनी भीड़ लग जाए, यहाँ जाओ तो भभूत दे देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, हमारी बीमारी ठीक हो जाती है, हमारी प्रॉब्लम हल हो जाती हैं। बाबा कहता है ऐसा जादू मंत्र मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जादूगर जरूर हूँ। लगा है जादू सबको बाबा का? किसको किसको लगा है बाबा का जादू? सबको। कौन सा जादू है? ज्ञान और योग का जादू तो लगना ही चाहिए। परिवर्तन आ गया, क्या थे क्या बना दिया बाबा ने, अंदर से निकलता ना शुक्रिया बाबा आपका। कहां कलयुग के कीचड़ में, अनेक व्यसनों में, अनेक बुराइयों में ये जीवन लिप्त था, और आप मिल गए, भटकना बंद हो गया, जीवन इतना शुद्ध पवित्र निर्मल बन गया। इसी जीवन में बाबा ने हम सबको ब्राह्मण सो फरिश्ता बना दिया, दिव्य गुणों से श्रृंगार कर दिया। लेकिन कोई आशीर्वाद के रूप में तथास्तु कह करके नहीं किया है, विधियां बताई हैं। और जिन विधियों को जिसने जितना अपने जीवन में धारण किया, उसी आधार से उसकी जीवन महान बनती गई। जब ये बाबा के वरदान मुरली में शुरू किए थे, मैं समझता हूँ 40 साल के ऊपर हो गया, 88 में बाबा ने एक दिन मधुबन वालों को बहुत सारे वरदान दिए थे। पूरी रात हम सब 120 भाई बाबा से मिले थे, और उसके बाद ये बाबा के महावाक्यों के आधार से ही मुरली के नीचे दादी जी की प्रेरणा से वरदान लिखना शुरू किया। तो वरदान की जो पहली लाइन होती है उसको सेटिंग करना पड़ा, क्योंकि बाबा ने कभी भाव के रूप में मुरली के अंदर बहुत कम वरदान भाव कह करके दिए हैं, लेकिन विधि बताई है और उस विधि के आधार से सफलता है। जैसे आज के वरदान में संगम युग की प्रालब्ध प्राप्त करने की विधि है। संगम युग की प्रालब्ध क्या है, याद है आज का वरदान? संगम युग की प्रारब्ध क्या है, किसको याद है? हाथ उठाओ। क्या समझ में आया? एक रस रहने वाले ऐसे। संगम युग की प्रारब्ध है बाबा के समान गुण, बाबा के समान हमारी स्टेज बन जाए, चाहते तो हम सब यही है ना, बाबा के समान हम बने, जैसे बाबा की स्टेज, बाबा की स्थिति एक रस, अच्छा लडोल एक रस मूड रही। मूड देखी बाबा की बदलते हुए? कभी कहेंगे साकार को नहीं देखा, लेकिन अव्यक्त को तो देखा होगा। जो अव्यक्त बाबा से मिले हैं वो हाथ उठाओ, इसमें भी कम है क्या? अव्यक्त बाबा से जो नहीं मिले वो हाथ उठाओ, काफी है। फिर भी वीडियो के द्वारा बाबा के अवतरण को, उस पार्ट को तो देखा है ना, वो तो देखा है हमने, तो बाबा को पूरी पूरी रात देखा। देखा ही नहीं, बाबा ने बोला और हमने लिखा, लेकिन पूरे 12 घंटे 13 घंटे बाबा बैठे एक रस मूड में, एक रस स्थिति में। और बाबा कहते मेरे बच्चे ऐसी प्रारब्ध बना लो, यही प्रारब्ध है संगम की, कुछ भी हो जाए। वो तभी हो सकता है जब जरा भी देहभान न हो, देहाभिमान न हो, नहीं तो यहां दर्द हुआ, यहां दर्द हुआ, ऐसे ही लेंगे वैसे ही लेंगे। योग में भी एक घंटा बैठते हैं तो कितना हिलते डुलते हैं, लेकिन बाबा 12 घंटा 13 घंटा बच्चों से मिल रहा है, चेहरे पर वही रूहानियत, वही रुहाब, वही मुस्कान, वैसी ही एक रस स्थिति, न इधर हिल रहे हैं न उधर हिल रहे हैं। कितनी एकाग्रता, कितनी एक रस मूड, एक रस स्थिति। बाबा कहते ये है संगम युग की प्रारब्ध, और ये संगम युग की प्रारब्ध, ये वर्षा हमें मिले तो भविष्य प्रारब्ध तो अपने आप मिल जाएगा। अब इसके लिए बाबा ने आज कहा कि अगर ऐसी प्रारब्ध संगम युग की प्राप्त करनी है तो उसका पुरुषार्थ है, उसकी विधि है, और उसकी विधि है एक रस मूड। ये जो मूड बदलती है ना, कभी खुशी की, कभी गमी की, कभी ईर्ष्या की, कभी नफरत की, ये मूड सारा दिन में बदलती रहती है। एक बार हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी ने एक किताब लिखी थी, 56 प्रकार के मूड, सारे दिन में हर घड़ी मूड बदलता है व्यक्ति का। कोई ने महिमा कर दी तो बहुत खुशी की मूड, कोई ने थोड़ी ग्लानी कर दी या इज्जत नहीं दी, सम्मान नहीं दिया तो अपसेट मूड। तो सारा दिन हमारी कितने प्रकार की मूड बनती है वो तो चेक कर सकते हो ना। हर एक को चेक करना चाहिए कि हमारी मूड का आधार क्या है। अगर मूड खुशनुमा है, एक रस है, स्थिर अचल है, तो ये प्रारब्ध अपने आप मिल जाएगी, बाबा के समान बन जाएंगे। और अगर हम मूडी हैं, छोटी छोटी बात, कोई ने कुछ कह दिया, मूड खराब हो गई, कोई बात अच्छी नहीं लगी, खुशी गायब हो गई, चेहरा बदल गया, उदासी आ गई, निराशा आ गई, घड़ी घड़ी के घड़ियाल देखो तो अभी अभी क्या खुशी में नाच रहे हैं, उमंग है, उत्साह है, एकदम ऐसे लगता है ऐसी भाग्यवान आत्मा और कोई नहीं। और वो सीन पूरी हो गई, दूसरी सीन आई तो सोडा वाटर हवा निकल गई, फिर क्या हुआ? तो आप सब इस बात पर अंडरलाइन करते हो कि हम सबको अगर संगम युग की प्रारब्ध बाबा से लेनी है, भविष्य प्रारब्ध की चिंता नहीं करना, तो कोई भी प्रारब्ध, कोई भी चीज, कई लोग आजकल दुनिया में पता क्या कहते हैं, इसने ऐसा मकान बनाया, इतनी अच्छी गाड़ी रख लिया, ये सब ऐसे ठगी करके, चोरी करके, ऐसे करके, ऐसे करके बना लिया, जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। हमारे आबू वाले भी कभी कभी ब्रह्मा कुमारी से बहुत ईर्ष्या करते हैं, सोचते हैं इनके पास कुछ भी नहीं था। जब बाबा 50 में आए ना यहाँ पर, एक साल का जो पेपर हुआ है, वो एक साल के पेपर में कुछ भी नहीं, सब जा देख रहे थे आबू वाले कि इनके पास तो खाने के लिए भी नहीं है, 300-400 लोग हैं, न खाने के लिए है, और जो कुछ था वो सब बेच बाच करके खत्म हो गया। तो वो देखते हैं और अभी की जीवन देखते हैं तो कहते हैं पता नहीं कहाँ से सब आ गया, कहाँ से ले आए। तो ईर्ष्या तो करते हैं ना, जलते हैं, कई लोग खुश नहीं होते। लेकिन कईयों को लगता है पता नहीं क्या किया इन्होंने। लेकिन कोई भी प्रारब्ध का आधार पुरुषार्थ है, कोई भी प्राप्ति का आधार कुछ न कुछ उसने मेहनत की है। बाबा ने मांगने से बिल्कुल ही मांगने के खिलाफ रहे सदा ही, कितना भी बेगरी पार्ट हुआ, कितनी भी परीक्षाएं आई, सागर की लहरें आई। आज के स्लोगन में क्या था, परीक्षाएं सागर की लहरों की तरह आएंगी, लेकिन विधि क्या है, बाबा के हाथ में हाथ। अब विधि के बिना हम सिद्धि चाहते हैं कि सागर की लहरें आएं और हमारे को कुछ भी ना हो, लेकिन हाथ में हाथ है। जितने वरदान लिखे गए, जितने मैंने तैयार किए, 6-7 साल के वरदान, एक भी रिपीट नहीं किया, लेकिन लक्ष्य रखा कि अगर कोई चीज की सफलता, कोई चीज का वरदान बाबा हमें दे रहा है भाव कह करके, तो उसकी विधि बताइए। वरदान लेने की भी विधि बताइए, क्या विधि है वरदान लेने की, भाई बाबा से वरदान लेने की विधि क्या है, बोलो। बाबा से सब वरदान अगर लेना है तो बाबा ने बहुत छोटी सी उसमें विधि बताई है, दान करो, दान करो, वरदान मिल जाएगा। आपके पास जो कुछ है, जो शक्ति है, तन की, मन की, धन की, समय की, विशेषताओं की है, लेकिन वो दान करो। दान कहना माना सेवा में लगाओ, दान कहना माना ऐसे दे दिया नहीं, लेकिन उसको किसी अच्छे कार्य में लगा दो। जैसे बीज आपके पास है, आज कोई किसान के पास, कोई गरीब के पास थोड़ा सा बीज रखा हुआ हो और वो हो यही सोचता रहे कि अगर इसको मैं खेत में डालूंगा, चिड़िया खा जाएंगी, कहीं बाढ़ आ जाएगी, बह जाएगा या सूखा पड़ जाएगा, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। अगर बीज बोने के समय ये संकल्प कर ले और न बोने जाए, है बीज लेकिन थोड़ा है और संकोच के कारण वो बीज नहीं बोता है, तो जब सबकी फसल कटती है तो वो आंसू बहाता है कि अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, अगर मैं थोड़ा सा बीज डाल देता तो आज मुझे भी एक का कई गुना होकर के मिल जाता। संगम युग बीज बोने का युग, पूरे कल्प के लिए जितनी प्रारब्ध आपको बनानी हो, कर्म क्षेत्र बाबा का ये बेहद का कार्य जो चल रहा है, स्थापना का कार्य चल रहा है, अगर इस स्थापना के कार्य में थोड़ा सा भी सहयोग लग गया मेरा, गुप्त रीति से, ऐसे नहीं दिखावे की रीति से, कई लोग दिखावे की रीति से सहयोग देते हैं, मेरा नाम हो जाए, मुझे लोग पहचान लें, थोड़ी तो महिमा कर दें। कई लोग ऐसी भावना से कुछ देते हैं। एक हमारे पास एक भाई था ना, तो जब सेंटर्स पर जाता था तो उसका जो ये कुर्ता था ना, थोड़ा पतला ड्रेस पहनता था और कुर्ते में ऊपर एक 500 की नोट रख लेता था, इधर वो दिखती थी। तो हम लोगों ने हंसी में एक दिन बोला, दादा ये किसको दिखाते हो। बड़े रमणीक दादा थे, यहां मधुबन में थे, रखा था दादी ने थोड़े दिन यहां पर। तो कहता है, पता है ये पैसा यहां रखा होता ना तो जिस सेंटर पर जाता हूं ना, बहुत खातरी होती है, लोगों को पता चलता ना, ये मेरी खातरी होगी पैसा है, दादा डालेगा भंडारी में, अंदर की मतलब रमणीकता थी। तो कई लोग दिखावे के लिए कुछ न कुछ लिफाफा देने की कोशिश करते हैं कि लोगों को पता चले। और बाबा के पास अगर कोई दिखावा करता है ना तो उसका भाग्य नहीं बनता, जितना करता उतना मिल जाता है, किया है कुछ न कुछ तो प्राप्ति तो होगी, लेकिन जो प्रारब्ध बननी चाहिए उसकी विधि यथार्थ नहीं है। विधि क्या है, गुप्त दान महापुण्य। जिसने गुप्त किया, आज ब्रह्मा बाबा ने इतना गुप्त किया कहीं वर्णन नहीं किया, कभी हम लोग ही उनकी हिस्ट्री में, उनकी कहानियों में बता देते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने इतना सब कुछ किया, अपनी सारी प्रॉपर्टी यज्ञ में समर्पित कर दी। हम लोग बताते हैं बाबा के मुख से कुछ नहीं निकला, एक धक से बाबा ने समर्पित किया, और समर्पित करने के बाद कन्याओं माताओं के हाथ में देने के बाद ये नहीं पूछा तुमने इसको कहां खर्च कर दिया, कितना खर्च हुआ, कितना बचत की, बिल्कुल न्यारा हो गया। ऐसा गुप्त किया जो ब्रह्मा बाबा कई बार कहते हैं इस हाथ से अगर कुछ करो तो इसको भी पता नहीं चलना चाहिए, और जो अच्छे संकल्प आते हैं तुरंत कर दो, पीछे कर लेंगे हो जाएगा, अभी तो बहुत करने वाले हैं, समय पर हम कर लेंगे, तो उसके बीच में माया इंटरफियर कर देती है, इसलिए उसका भाग्य नहीं बन सकता। अगर भाग्य ऊंचे से ऊंचा बनाना है, विधि बाबा सब बातें बताता है, आप किस पद को प्राप्त करना चाहते हो, राजाई का पद भी है, साहूकार का भी है, प्रजा का भी है, साहूकार प्रजा का भी है, दास और दासी का भी है, चंडाल का भी है, सब राजधानी बन रही है। भगवान सतयुग की राजधानी की स्थापना कर रहा है, और बच्चों को खुली ऑफर है कि तुमको जो चीज चाहिए ले लो, जो पद चाहिए ले लो, उसके लिए यथार्थ विधि माना नियम, विधि माना कायदे। अगर ईश्वरीय कायदों को, इन नियमों को कोई यथार्थ रीति से पालन करता है तो उसकी भविष्य प्रारब्ध अपने आप अच्छे से अच्छी बनती जाती है, उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। लेकिन कायदे में फायदा है, तो बाबा ने जो भी कायदे बनाए, जो भी हम सबके लिए नियम बनाए, जो विधियां बताई, उन विधियों को यथार्थ समझ करके उनको पालन करने से सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता मिलती है। इसलिए सिद्धि के पीछे हमें भागने की जरूरत नहीं है। कई सेवाएं करते हैं, सेवाओं के बीच में संकल्प रहता है इसकी सफलता हो, कोई जमीन मिल जाए, कोई मकान मिल जाए, कोई ये हो जाए, अच्छा विद्यार्थी निकल आए, मधोगरी अच्छी आ जाए, इस भावना से सेवा करते हैं, विधि यथार्थ न होने के कारण। अगर आता भी है तो थोड़े दिन ठहरता और फिर भाग जाता है। विधि यथार्थ चाहिए, और विधि यथार्थ है आज हमारी दादियों ने जो सेवाएं की, जो इतना बड़ा विस्तार किया, मांग करके नहीं किया। बाबा ने तो सीधा सिखाया है मांगने से मरना भला। क्या विधियां अपनाई? मैं दादी जानकी जी को बहुत नजदीक से साथ में बैठ करके उनकी विधियों को देखता था, दादी प्रकाशमणि जी के साथ भी था। लेकिन दादियों ने जो विधियां अपनाई, यज्ञ को भरपूर करना है, इसको निर्विघ्न रखना है, इसको यथार्थ रीति से आगे बढ़ाना है, सब सिद्धियां प्राप्त की हैं। उनकी यथार्थ विधियों के आधार से आज यज्ञ इतना आगे बढ़ा है। बहुत यथार्थ विधि अपनाई, और यथार्थ विधि में मैंने जहां तक नोट किया, दादियों ने ये आस नहीं रखी कि इस आत्मा को अगर मैं पालना दे रही हूं, सेवा दे रही हूं, तो इसके रिटर्न में इतना करेंगे, भावना नहीं रखी, लेकिन कराना जरूर है, सफल कराना है, ये भावना थी। इनका सफल होना चाहिए, इनका भाग्य बनना चाहिए, इनके ऊपर बोझ न चढ़ जाए, ये भावना जरूर थी, लेकिन किसी से कह करके नहीं कराया। एक बार एक बहुत अच्छी दायल घराने की आत्मा आई, मैं बैठा था दादी के सामने, और दादी से कभी कभी अंदर से चिटचैट करते थे, रू रिहान अकेले जब होते थे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें होती थी। तो उस दिन मैं बैठा था तो एक आत्मा आई, बहुत अच्छे घराने की, विदेश की थी। दादी मेरे को कान में बोलती, देखना ये जो है ना आज तक यज्ञ में कुछ नहीं करती है, आज इसे कराऊंगी। बहुत रमणीकता से, मैं कैसे दादी कराएंगी, मांगेंगी क्या? नहीं नहीं, मांगना क्यों, बाबा ने मना किया मांगने के लिए। अब वो आ गई सामने, दादी ने सामने बिठाया, और मैं साथ, मेरे कहा तुम देखते रहना बस, बेटर हो। मैं बैठा था, दादी ने पहले जो जैसे स्लोगन देती है, टोली देती है, दृष्टि देती है, ऐसी एक एक चीज उसको बहुत प्यार बहुत स्नेह दिया, और एक एक चीज जो आजू बाजू रखी थी वो हाथ में देती गई। फिर बाद में कहती है भाइयों को इसके लिए शॉल ले आओ, इसके लिए अंगूठी ले आओ, इसके लिए ये ले आओ। तो मैंने कहा ये कराने की भावना या देने की भावना। तो उसको इतना दिया, इतना देती गई देती गई, उसके हाथ भर गए, उसके ऊपर सब कपड़े आ गए। अब जब उठी तो उसको अंदर से आया, दादी मुझे इतना यज्ञ का दे रही है, मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा बोझ चढ़ेगा। वो बाहर गई और भाइयों कहते मुझे एक लिफाफा दे दो ना, और लिफाफा लेके उसमें अच्छी तरह से सब भर करके दादी के आगे, दादी मेरे ऊपर यज्ञ का बोझ चढ़ेगा, आपने इतना मुझे दिया है। अपने आप आकर के दे के गई, और जब चली गई तो कहते देख आ गया ना, कराना होता ऐसे। बहुत अच्छी विधि है, विधि है यज्ञ में। अगर कराना है किसी से सेवा तो मांगने से नहीं होती। योग के अच्छे अनुभव करने की विधि क्या है? अभी हम सभी योग में बैठे 3 मिनट एकाग्र हुए, या जो सुना उस पर चिंतन किया, या बाहर बुद्धि इधर उधर गई। योग की अच्छी अनुभूतियां करने की विधि क्या है? उसकी भी विधि है, ऐसे नहीं सिद्धि मिलती है। योग लग गया अच्छे अनुभव होने लगे, सिद्धि है, अच्छे अनुभव होने चाहिए। खुशी का अनुभव, हल्केपन का अनुभव होना चाहिए, बाबा से मिलन का अनुभव होना चाहिए। लेकिन विधि अपनाते नहीं है और कहते बाबा मेरी बातों का रिस्पॉन्ड करे, बाबा से मुझे कुछ शक्ति मिले, सकाश मिले, आशाएं रखते हैं, लेकिन विधि यथार्थ न होने के कारण वो सिद्धि प्राप्त नहीं होती। कहते हम तो बाबा को बहुत प्यार से बातें करते, बाबा एक बार भी जवाब नहीं देता, ऐसा है क्या? विधि यथार्थ है तो जरूर बाबा जवाब देगा, विधि नहीं आती है। और विधि इतना सिखाता है बाबा, कितना साकार मूल्यों में सिखाया, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो, विधि है मुझे याद करो। लेकिन ऐसे नहीं कहा कि देह समझ करके याद करो, देह से न्यारी, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक बहुत पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, उस स्वरूप में स्थित होकर के बैठ जाओ, अपने आप बाबा सामने आ जाएगा। आत्मा का बाप है ना, शरीर का तो नहीं है। और बाबा को कोई अपनी मराठी हिंदी गुजराती भाषा तो सिर्फ सुननी नहीं है, जिसमें रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। बाबा को तो भावना की भाषा चाहिए, सच्चे दिल का प्यार चाहिए। अगर किसी को भगवान को राजी करना है तो कौन सी विधि है? सच्चाई, सच्चे दिल पर साहेब राजी। हम भगवान को राजी करने के लिए बहुत मेहनत करें, लेकिन सच्चाई नहीं, अंदर एक है बाहर दूसरा है, कथनी अलग है करनी अलग है, दिखावा बहुत है, भगवान भी मुस्कराता है। इसलिए अगर भगवान को राजी करना है तो क्या करेंगे? वो सच्चे जो हूं जैसा हूं बाबा, बिल्कुल आपका हूं। अंदर से बाबा बाबा, ऊपर से बाबा बाबा, और अंदर से कोई देहधारी याद आ रहा हो, बाबा तो निराकार है, वो कैसे मदद करेगा, कोई तो साकार में चाहिए। अंदर से रहता है कोई साकार में होगा तब तो जवाब देगा, मदद करेगा। और ऊपर ऊपर से हम बाबा बाबा करें तो बाबा तो पक्का सौदागर है ना, कच्चा नहीं है। अगर आपका अंदर बाहर एक है कि नहीं, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, बाबा कहीं से भी मदद करने के लिए बना हुआ है। लेकिन शर्त रखी है, एक नियम बताया, एक विधि बताई, अगर भगवान की मदद आप सबको चाहिए तो उसकी मदद का आधार है हिम्मत। हिम्मते बच्चे मददे बाप, दुनिया में भी कहते हैं ना हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अगर खुदा की, भगवान की मदद की जरूरत पड़ती है, महसूस होती है मुझे जरूरत है, मिलनी चाहिए, तो मांगने से नहीं देगा। जाओ प्रार्थना करते रहो सारा दिन मंदिर में बैठ करके, मिलेगी नहीं। अगर लेनी है, सच्चे दिल से लेनी है, तो हिम्मत का एक कदम आगे रख दो। बाबा 1000 गुना मदद करने के लिए बंधा हुआ है। इसलिए हिम्मते बच्चे मददे बाप, सच्चे दिल पर साहेब राजी, नियत साफ मुराद हासिल। ये शब्द बहुत अच्छे बाबा की मुरलियों में आते हैं समय पर समय। अगर मुरादें बहुत सारी हैं आपकी और समझते हो ये मेरी सब मुरादें, मेरी सब इच्छाएं पूरी हो जाएं, लेकिन नियत में कोई खोट है तो पूरी नहीं होंगी। नियत साफ चाहिए। अगर सच्चाई सफाई है तो भगवान को बहुत प्रिय है, और वो ये विधि है। इस ईश्वरीय मार्ग में जो आत्माएं फास्ट गई हैं, आगे गई हैं, उन्होंने यथार्थ विधियों को सीखा, अपनाया, उन विधियों को पालन किया और आगे बढ़ गई। बाबा कहता है अगर कोई को फास्ट स्पीड जानी है तो उसकी विधि क्या है? फास्ट रख लो, माना व्रत रखो। अगर आपने व्रत रख लिया है, फास्ट रखा है बुराइयों से, विकारों से, जो भी हम देखते हैं इधर उधर की बातें सुनते हैं उन सब से हमने फास्ट रख लिया। एक बहुत अच्छा अभी अभी हमारी क्लास में बात निकली कि लोग उपवास रखते हैं अपनी हेल्थ की सेफ्टी के लिए, हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण उपवास रखते हैं। हफ्ते में 15 दिन में एक दिन नहीं खाएंगे तो शरीर ठीक रहेगा। तो हम लोगों की बात निकली कि डिजिटल उपवास हम रख सकते हैं क्या? डिजिटल उपवास, आज डिजिटल के पीछे, इस मोबाइल के पीछे, इंटरनेट के पीछे कितना टाइम हमारा व्यर्थ हो रहा है। इसका उपवास कभी रख के तो देखो। अगर मान लो 2-3 दिन नहीं, इसको हम नहीं चलाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा? घाटा पड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। आज से 10 साल पहले कोई था हमारे पास है, आज इसके इतने अधीन हो गए, इतने अधीन हो गए। आज हमारे लोगों के पास सुबह सुबह जियो का इंटरनेट नहीं चला, हमने मुरली नहीं सुन पाई, संकल्प चले। लेकिन अगर हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, ये नहीं सुना, क्लास में सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, साधन तो बाबा ने बहुत सारे दिए हैं ना, लेकिन इसकी अधीनता इतनी आत्मा को हो गई है। आज जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहां तक मुझे पता चल रहा है, कईयों की नींद फिट रही है, कई डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, कई इंटरनल बातें जो नहीं किसी को पता चलनी चाहिए, जरूरत नहीं है किसी के आगे कोई सुनाने की बताने की, वो एक मिनट में कहां से कहां पहुंच जाती हैं। ये डिजिटल ने कमाल कर दिया है, कमाल ही कहेंगे, धमाल किया है लेकिन कमाल किया है। जरूरत नहीं, अच्छा सेंटर पर किसी का बर्थडे हो रहा है, किसी का श्रृंगार हो रहा है, कोई खुशी में डांस कर रहे हैं, अब ये सब बातें पब्लिक में देने की जरूरत है क्या? लेकिन अगर YouTube खोल लो हमारे सेंटर्स का, ये सब समाचार है। कितना नेगेटिव वातावरण इससे बनता है, कितना लोगों के ऊपर गलत छाप पड़ती है। एक आध्यात्मिक जीवन में ये दिखावा किस लिए? चलो ठीक है, हमारा परिवार है, हम हंसते हैं बहलते हैं, आपस की बात है। लेकिन इस डिजिटल ने एक तरफ सुख दिया है, साधन दिए हैं, सेवा की अच्छी प्रोग्रेस हुई है, आज इंटरनेट के माध्यम से जगह जगह पर हमारी क्लासेज चली हैं, मुरली सबने सुनी है, सेवा हुई है, साइंस ने सुख दिया है। लेकिन सुख के साथ साथ अगर इसकी कोई ने परहेज नहीं किया तो माइंड को डिस्टर्ब इसने किया है, एनर्जी भी गई, पैसा भी गया और संबंध भी बिगड़े हैं। आज छोटे से परिवार में मान लो आज एक सेंटर पर 4-6 बहनें रहती हैं, और जहां कुछ लोग रहते हैं 2-4-10 लोग, छोटी मोटी बात हो गई उसको भुलाने में फायदा होता है। चलो अभी बात हुई है, परिवार है, बात हो गई, 1-2 घंटे के बाद भूल जाते हैं, फिर हिलमिल करके रहते हैं। लेकिन नहीं सहन हुआ, नहीं समझ में आया, उसी समय मोबाइल उठाई, अपने माँ को बता दिया, अपने बाप को बता दिया, अपने परिवार को बता दिया कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ये हुआ, हमसे ऐसा व्यवहार किया गया। अब उस व्यक्ति की भावनाएं जो बनी हुई थी बड़ों में, यज्ञ में, वो तो डिस्टर्ब हो गई। उसने समझा, हमने तो अपनी बात दे करके हल्की हो गई, हल्के हो गए, और उसने उस बात को, परिवार ने उस बात को इतना उल्टा ले लिया जो उसकी भावनाएं टूट गई, बाबा से दूर हो गया, यज्ञ से दूर हो गया, कितना बड़ा बोझ। लेकिन आज एक व्यक्ति सोचता नहीं है कि मुझे इसका भी उपवास करना चाहिए, दो चार घंटे फिक्स कर लो, जरूरी है देखो, जरूरी है फोन करो, मना तो बाबा कुछ नहीं करता है, साधन यूज करो, लेकिन अगर साधना करनी है तो इन साधनों से वैराग्य चाहिए, नहीं तो ये साधन बहुत अंदर से डिस्टर्ब करेंगे और एक दिन तो फेल होने ही है, जाने ही है। इसलिए आप सब अगर अपनी ऊंची स्थिति बनाना चाहते हैं तो ऊंची स्थिति बाबा के बच्चों की बननी ही है, बनाना ही बाबा को, लेकिन उसके लिए विधियों को जरूर अपनाओ। बिना परहेज के कोई भी दवाई फायदा नहीं करती। अगर बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे संपूर्ण पावन बन जाएं, संपूर्ण स्वच्छ बन जाएं, ये हमारा सिद्धि स्वरूप स्थिति है, क्योंकि जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ की प्रारब्ध जो संगम युगी है वो है हमारी संपूर्ण पावन स्थिति। और उस संपूर्ण पावन स्थिति को बनाने के लिए क्या हम ये विधि नहीं अपना सकते हैं कि मुझे ऐसी चीजें देखनी नहीं है, सुननी नहीं है, वर्णन नहीं करनी है, पढ़नी नहीं है। ये अगर विधि अपना लें, ये बाउंड्री है हमारे लिए कि जो चीजें मन के संकल्पों को विचलित करती हैं, अंदर अंदर संकल्पों को डिस्टर्ब करती हैं, इंद्रियों में उत्तेजना पैदा करती हैं, ऐसी चीजों को मुझे परहेज से यूज करना है, परहेज रखो। आवश्यक है, करना जरूरी समझते हो, करो सेवा के लिए, लेकिन अधीन बन करके नहीं, अधिकारी बन करके रहो। आज परिवार में हर एक चाहता है कि हमारे सब संबंधी हमारा कहना माने, हमारे बच्चे हमारे आर्डर अनुसार चलें, अधिकार भी रखते हैं, फर्ज भी समझते हैं, और फिर भी अगर नहीं कोई मानते तो डिस्टर्ब भी होते हैं कि मैंने इसको जन्म दिया, मैंने इसको बड़ा किया, मैंने इसकी पालना की, अभी ये मेरी सुनता नहीं है। अब बाबा को अगर ये बात सुनाई जाए कि मेरे परिवार वाले, मेरे नजदीक वाले, मेरे ही संबंधी मेरी नहीं सुनते हैं, तो बाबा तो करेक्शन ये करेगा कि तुमने विधि यथार्थ नहीं अपनाई है। अगर तुम्हारी विधि यथार्थ है तो परिवार वाले आपके पीछे पीछे चलेंगे, आपका कहना मानेंगे। क्या है विधि भाई, कौन सी विधि है? बाबा कहता है सबसे नजदीक आपके आत्मा के आपकी कर्मिंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, संस्कार हैं, आंख नाक मुख कान हाथ, ये हैं आपका सबसे पहला जिसके साथ संबंध है। क्या ये संबंधी आपका कहना मानते हैं? जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया, जैसा आया बोल दिया, जो आया सुन लिया, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया और उसी आधार से सामने वाले को बोल दिया, वो डिस्टर्ब हो गया। हम कहते ये मानता नहीं है, सुनता नहीं है, लेकिन हमने अपने आप को पहले अपने कंट्रोल में रखा है। अगर वो सिद्धि चाहिए कि परिवार हमारा एक मत होके चले, परिवार हमारी बात सुने, समझे, माने, तो उसकी विधि अपना लो कि मैं अपने कर्म इंद्रियों को पहले मना लूं। ये मेरे आर्डर पर चलनी चाहिए, जितना सोचना है उतना ही सोचूं, जो बोलना है उतना ही बोलूं, जो देखना है उतना ही देखूं, ज्यादा न देखो न सुनो न बोलो। आप अगर इस विधि को अपना करके चलते हो आपके सब लोग अपने हो जाएंगे। आज हम कहते ये मेरा रिगार्ड नहीं करता है, ये मुझे मान नहीं देता, इससे मुझे स्नेह नहीं मिलता, लेकिन बाबा कहते हैं पहले विधि है, तुम दे रहे हो। आज हमने बाबा को इतना रिगार्ड दिया है, दादियों को इतना देते हैं, सबको देते हैं, ऐसे उन्होंने मांग करके नहीं लिया है। और ये चीजें किसी से मांगने से मिलती भी नहीं है। अगर सचमुच किसी का रिगार्ड चाहिए, परिवार का, बड़ों का, सबका, तो हमें रिगार्ड देना होगा, हमें पहले देना होगा, सम्मान देना है, स्नेह देना है। बाबा ने ये विधि बताई है और इस विधि को जिसने जितना पालन किया है, मेरा तो इस पर बहुत ध्यान रहता है। अगर मेरी डिपार्टमेंट के 10 लोग मेरा कहना नहीं मान रहे हैं तो दूसरे लोग मेरे से क्या मांगे, क्या अपेक्षाएं हम उनसे रखें। कम से कम जिनके साथ रहते हैं वो तो मुझे रिगार्ड दें, लेकिन मांगने की बजाय अगर हम उनको बहुत प्यार से, स्नेह से, रिगार्ड दे करके सम्मान से बात करते हैं, उनको कभी भी गुस्से में कुछ बात नहीं कहते, तो अपने आप उनके मन से निकलता है भाई साहब तो कभी कुछ कहते ही नहीं है। वो अपने आप प्यार से सब सेवाएं करते हैं। हम सेवाएं लेने के लिए अधिकार से डांट करके, उनको डपट करके कहें तुमने ये नहीं किया, तुम ठीक नहीं करता है, कब तक करेगा? दबाव में आकर के गुस्से से हमारे सामने करेगा, फिर मजाक करके उठ जाएगा। ठीक यथार्थ सेवाएं नहीं हो सकती, इसलिए मुझे पहले बदलना पड़ेगा। बाबा ने हम सबको कहा अगर दूसरों को बदलना है तो पहले खुद को बदल लो। किसी को भी बदलना नहीं जरूरत है आपको। अगर ये नहीं बदल रहा है उसको छोड़ो, पहले अपने आप से बातें करो। बाबा ने विधि बताई है, पहले खुद बदल लो। खुद बदलोगे तो जग बदल जाएगा। जग को बदलने हम चल दिए हैं, खूब सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन खुद को बदलने का ध्यान नहीं। विधि है तब सिद्धि है। तो बहुत गहराई से इस विषय को समझना, जितनी हमारी पढ़ाई है, जितना बाबा हम सबको ऊंची स्टेज पर, ऊंची स्थिति में ले जाना चाहते हैं, उन सब के लिए तथास्तु नहीं कहा है, उसकी विधि बताई है। ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, करने से होगा, बीज डालने से फल मिलेगा। बीज ही नहीं बो रहे हो और कहे तो ये सब मिल जाए, संभव नहीं है। सेवा में अगर सिद्धि चाहिए, सफलता चाहिए, संगठन में अगर सिद्धि चाहिए, सफलता चाहिए, तो विधियों को तो अपनाना पड़ेगा। और बाबा ने सब बताया है। मैं तो कभी कभी यही सोचता हूं कितनी विधियां बताई है बाबा ने, ये करो, ये करो, ये करो, और अगर हम उसी तरह से करते हैं तो वो विधि सेकेंड में सिद्धि दिलाती है, उसी समय होती है। उसमें भविष्य प्रारब्ध की, भविष्य में बन जाएंगे, भविष्य में हो जाएगा, बाबा कहता दिलासा वाला पुरुषार्थ नहीं करो। भविष्य में जो बनना है बनेंगे ही, लेकिन वर्तमान में हमारी वो बेफिक्र बादशाही की स्थिति हो जाए, निश्चिंत स्थिति हो जाए। निश्चिंत स्थिति में रहने की विधि क्या है? क्या है विधि, क्या बताई बाबा ने? सदा निश्चिंत स्थिति, बेफिक्र, बेगमपुर की भाषा के, जैसे ब्रह्मा बाबा ने बनाई, दादियों ने बनाई जी। जितना निश्चय बुद्धि है उतना निश्चिंत स्थिति है। बताया है बाबा ने, निश्चय से निश्चिंत स्थिति है, निश्चय से विजय है। और दादियों ने कभी भी जो निश्चिंत स्थिति में रही, जहां तक मैंने देखा, उसका आधार उन्होंने बनाया। जब बड़ी दादी से कभी पूछते थे ना, आपको कभी टेंशन होता है, कभी नींद फिटती है, कितनी सारी बातें तो आती हैं संगठन के बीच में, कहती थी मेरी क्यों नींद फिटेगी, मेरा थोड़ी यज्ञ है, बाबा का है, बाबा जाने, मुझे क्या करना है, मैं हेड नहीं हूं, और जिस दिन मैं हेड समझूंगी उस दिन मेरा हेडक हो जाएगा। इतनी नम्रचित, निर्माणचित, निमित्त भाव के कारण वो निश्चिंत स्थिति में रही। और जहां मैं आ गया कि मैं करती हूं, मैं बड़ी हूं, मैं संस्था की हेड हूं, मैं नहीं करूंगी तो अब कौन करेगा, वहां ही सब टेंशन पैदा हो जाते हैं। इसलिए हमारी दादियों ने मैंपन को, मेरेपन को गला दिया, समाप्त किया, निमित्त भाव से नम्रचित होकर के सबको सम्मान देते हुए यज्ञ को इतना निर्विघ्न बनाया। ये सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली। अगर हम भी अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाना चाहते हैं, अपने पुरुषार्थ में निर्विघ्न रहना चाहते हैं, ये सिद्धि है, कि हमारी स्थिति बिल्कुल विघ्न विनाशक बने, निर्विघ्न बने, कोई विघ्न ना आए, तो ध्यान देना जहां पर मैं आए उसको समर्पित कर दो। जरा भी मैंपन यूज नहीं करो, कहीं मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मेरी जवाबदारी है। बाबा कहता है जहां तुमने मैं और मेरे का बोझ सिर पर ले लिया वहां पर भारी हो जाओगे, वहां पर विघ्न खड़े हो जाएंगे। जितने विघ्न क्रिएट हो रहे हैं वहां ही हो रहे हैं जहां पर मैं और मेरा है, और जहां पर सब बाबा का है, करण करावन हार बाबा करा रहा है। दादी जानकी का शब्द यूज करना, ये प्रभु लीला चल रही है। बहुत प्यार से कहती थी, कभी कभी भंडारे में चक्कर लगा के आती थी, 20-25 हजार का भोजन बन रहा है, इतने निर्विघ्न रूप से सब क्लासेज हो रही हैं, कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, देख करके आती थी। और जब बैठती थी तो हम लोग जाते, अरे देखा तुमने प्रभु लीला चल रही है। क्या दादी, प्रभु लीला देखा? अरे इतना सब चल रहा है, भंडारा भंडारी बाबा भरपूर कर रहा है, कोई मांगने की कोई कहने की जरूरत नहीं, सब कार्य ऑटोमेटिक चल रहा है, ये सब प्रभु लीला चल रही है। करण करावन हार बाबा करा रहा है, उसके बच्चे हैं, उसका यज्ञ है, उसका परिवार है, उसकी सारी पालना है। और एक हद की बुद्धि वाला समझता, मैं करता हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैंने किया, मैंने मकान बना के दे दिया, मैंने जमीन दे दी। और बाबा कहता है ये मैलापन को बाबा स्वीकार नहीं करता, जहां मैं आया वहां मैलापन है। इसलिए विधि को यथार्थ रखना, अगर कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, सफल कर रहे हो, लेकिन जरा भी उसमें मैं आ गया वो निष्फल हो जाएगा, विधि यथार्थ नहीं है। सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, किसने? ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ किया। ऐसे थोड़ी श्री नारायण बना, कहते नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने। अब वो बन के दिखाया उसने, करनी करके दिखाई, और किसी जगह पर ये नहीं कहा मैं करता हूं। मैंने बड़ी अच्छी मुरली सुनाई आज, अरे बच्चे मैं कुछ नहीं करता हूं, इस बाबा से तुमको कुछ नहीं मिलता है, इसको याद नहीं करना, इसका फोटो नहीं रखना, नहीं तो पाप हो जाएगा। कितना निरहंकारी, कितना नम्रचित, किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं आया, और नंबर वन नारायण पद प्राप्त कर लिया। हम सभी भी बाबा को ही तो फॉलो कर रहे हैं ना। विधि यथार्थ रखो बस, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे, मन में कोई डिस्टरबेंस दिखाई दे, हलचल दिखाई दे, आप चेक करना किस विधि का उल्लंघन कर रहा हूं, किस ईश्वरीय नियम को मैं तोड़ रहा हूं जिस कारण मुझे ये प्रॉब्लम आई है, मेरी खुशी गायब हो गई, उलझन पैदा हो गई, योग नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, उदासी है, निराशा है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको दिखाई दे, जरूर चेक करना कहीं न कहीं विधि का उल्लंघन है। किसी भी परसेंट में हो, 5-10% क्यों न हो, वो विघ्न क्रिएट कर देगी। और अगर विधि यथार्थ है तो इस यथार्थ विधि के आगे सब सिद्धियां उसके पीछे पीछे घूम रही हैं। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार तब है जब हमारा संकल्प, हमारा बोल, हमारे हर कर्म सफल हो रहा है। बाबा ने पहले ही स्लोगन दिया, सफल करो तो सफलता मिलेगी, बिना सफल किए हुए सफलता मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता है। अगर व्यर्थ जा रहा है, कोई चीज भी व्यर्थ मेरी जा रही है, सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अगर सेवाओं में सफलता चाहिए तो उसकी विधि बाबा ने क्या बताई है, केवल वाचा सेवा नहीं करो। कितने वरदान में ये बातें आई हैं कि वाचा सेवा नहीं करो, लेकिन पहले मनसा को बहुत शुद्ध पवित्र बनाओ, पावरफुल बनाओ। मनसा पावरफुल हो, वाचा नॉलेजफुल हो, और कर्मणा लॉफुल हो। अगर आपके संबंध संपर्क में, कर्मणा बाबा संबंध संपर्क को कहते हैं, संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा को बहुत रमणीकता का, एक ईश्वरीय फैमिली का, एक परिवार का आप अनुभव कराते हैं, और उस अनुभव के साथ साथ ज्ञान देते हैं, सूखा ज्ञान नहीं चाहिए, पारिवारिक ज्ञान चाहिए, नॉलेज फुल बन करके उसको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन एक फैमिली रूप में परिवार की भावना देते हुए उसको बाबा की बातें सुना रहे हैं, वो मानेगा? वो फॉलो करेगा। लेकिन मनसा बहुत शुभ है, कल्याण की है, इस आत्मा का कल्याण हो जाए, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए। कई बार सेवा करते हुए ये भावना रहती ना, ये ज्ञान में चल गया ना तो ये मदद मिलेगी, ये सहयोग मिल जाएगा, वहां पर ही गलती पैदा करते, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, वो क्या करेगा, उससे हमको क्या चाहिए। कराने वाला बाबा बैठा, जिससे कराना होगा करा लेगा, इतने भोले भोले बच्चों से इतने बड़े बड़े काम करा लेता है। ये ज्ञान सरोवर जब बना ना, तो दादी ने एक नियम बनाया कि भाई सभी ब्राह्मण एक एक रुपया रोज निकालेंगे। ज्ञान सरोवर बना था, ओम शांति भवन बना तब 10 पैसा था, ज्ञान सरोवर में 1 रुपया था। और जब कोई ने दादी से पूछा, दादी ज्ञान सरोवर कितने का बना, बोला 1 रुपये का बना है। इतना बड़ा भवन बना, आप देख रहे हो कितने सब प्रकार की व्यवस्थाएं, सब ब्राह्मणों के 1-1 रुपये के सहयोग से। लेकिन एक बहुत गरीब माता जो झाड़ू पोछे का काम करती थी, छोटा काम था, आ नहीं सकती थी मधुबन में, उसके कान में गई, मुरली सुनती थी, कोई ने बताया टीचर्स ने कि ज्ञान सरोवर बन रहा है, सब 1-1 रुपये का सहयोग, रोज का 1 रुपया निकालते हैं। तो उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन अपने पैसे को बचाती गई बचाती गई। जब दीदी आने लगी वहां से उसकी, तो दीदी कहती, दीदी मेरी भी एक ईंट लगवा देना। और उसने ईंट क्या दिया, उसने जो पैसा इकट्ठा किया था उसकी एक छोटी सी सोने की अंगूठी बनाई, और अंगूठी बना करके उस टीचर को हाथ में दे दी। वो आई यहां पर ओम शांति भवन में, दादी क्लास करा रही थी, और दादी को बताया, दादी एक माता ने, बहुत गरीब है, उसने ज्ञान सरोवर के लिए एक अंगूठी भेजी है ईंट लगाने के लिए। और दादी इतना खुश, क्या बताऊं मैं आपको, वो खुशी देखने जैसी थी। दादी ने अंगूठी ली, यहां पर पहन लिया, और पहन करके खूब डांस किया पहले, कि ऐसे बच्चे, इतने गरीब गरीब बच्चों ने इस स्थान में अपना सहयोग दिया है, किसी से मांगा नहीं दादी ने। और कहती थी, बाबा इतना चतुर है। क्या चतुराई है, कहता जितना खर्चा है उतना ही आता है, 1 पैसा ना ज्यादा आता ना कम आता है, ये बाबा की चतुराई है। लेकिन वो सच्चाई थी दादी के दिल में, प्यार था बाबा के प्रति, जो संकल्प किया है उस आत्मा ने सब संकल्प सिद्ध हुए। संकल्प किया और सिद्धि मिली है। संकल्प कैसे सिद्ध हुए, वो संकल्प समर्पित थे, बाबा के लिए समर्पित थे, मेरा कोई नाम नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं कर रही हूं। और समर्पित संकल्प होने के कारण उन्होंने संकल्प किया, यहां ओम शांति भवन बनना चाहिए, पैसा नहीं है, और बन गया। कोई ने जमीन ला करके दिया, कोई ने सहयोग दिया, कोई ने ईंटे उठाए, पत्थर तोड़े, और समय पर पहले ही डेट बता देती, इस डेट को उद्घाटन करेंगे। संकल्प की सिद्धि थी, आप समझ सकते हो। दिसंबर 82 में ओम शांति भवन की एक दीवाल नहीं बनी हुई थी, 3 दीवालें बनी थी, कैंची नहीं लगी थी, छत नहीं थी, फ्लोरिंग नहीं थी, और 8 फरवरी को उद्घाटन होना है, और उसमें भी यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल आने वाला है, डेट फिक्स, उद्घाटन करने वाला फिक्स। और दादी ने डेट दिया और काम आधा भी नहीं हुआ है। उनको इतना विश्वास था कि बाबा का काम है और सब बच्चे मिलके कर लेंगे। विश्वास एक बहुत बड़ी शक्ति है, और उस विश्वास की शक्ति से सफलता मिली। संकल्प था, एक पार्टी आई, दादी ये काम मैं करूंगा, चुनाई का काम, कैंचियों का काम, फटाफट करके खड़ा कर दिया। दिन रात मेहनत किया सबने, कोई ने कैंची चढ़ाई, कोई ने रंग लगाया, कोई उसकी साउंड के सिस्टम बनाई, 2-3 दिन पहले फ्लोरिंग किया, और सब करके टाइम पर उद्घाटन हो गया। आप समझ सकते हो क्या विल पावर थी, संकल्प की सिद्धि थी। संकल्प आया, ज्ञान सरोवर बनाना है, बहुत सारी इधर उधर जमीनें देख रहे थे, कुछ नहीं मिलता था। एक दिन बाबा ऐसे आए थे यहां, बाबा आए ओम शांति भवन में ही, और एकदम विदाई के समय सुबह 6:30 बजा था, और बाबा ऐसे गए और फिर वापस आ गए, आंख खोल दी, और दादी की तरफ देख के नजदीक बुलाए, इधर आओ। और बोलती है, बाबा बोलते हैं दादी को, ये जो दूध वाले आते हैं ना, इनसे बात करना, उनके पास जमीन है। सुबह 6 बजे बाबा ने दादी को ऐसे बोला और बोल करके वो चला गया, और 9 बजे दूध वाले यहां से सालगांव से दूध लेकर के हमारे वहां पांडव भवन में आए, और आते ही हमारे बल्लभ भाई बैठे थे सामने, वही दूध संभालते थे। उनको बोला, बल्लभ भाई हमारे पास एक जमीन पड़ी है, मैंने सुना है आप लोग लेना चाहते हो, बहुत ढूंढ रहे हो, लेंगे क्या? हम लोग ऐसे ही दे देंगे, थोड़े दाम में ही दे देंगे। तो उसको पता था दादी को संकल्प चल रहे हैं। दादी के पास फौरन पहुंचा उसको लेकर के, दादी ये दूध वाले आए हैं। तो दादी कहती है, आज ही तो बाबा ने मुझे बोला है, जाओ जाओ देख के आओ, यहां ना रोड है ना कोई जमीन ऐसी है, पूरा ही जंगल। देख करके तो भाइयों ने सोचा यहां क्या बनेगा, क्या करेंगे, लेकिन बाबा की टचिंग है, बाबा कह रहा है, दादी ने कहा ले लो। हम लोगों के नाम से ही सारी जमीन ले लिया। जमीन लिया, नक्शा नहीं पास हो सकता है, चरागाह की जमीन है, ये है वो है, लेकिन बाबा ऐसा जादूगर है, फटाफट सब काम क्लियर किया। हमारे एक चन्ना रेड्डी जी गवर्नर बने थे, बाबा के राजस्थान के गवर्नर वो रहे, और उनके राज्य में ही उनके हाथ में पावर आई और ये बाबा का इतना स्थान बन गया, सब क्लियर हो गया नक्शा। तो करण करावन हार बाबा करा रहा है, कोई कहे मैंने ले लिया, मैं करता हूं, मैं नहीं करता तो कौन करता? बाबा कहता है तेरा अहंकार है, और भगवान को अहंकार वाले बच्चे पसंद नहीं आते, इसलिए बहुत निरहंकारी, बहुत नम्रचित, बहुत निर्माणता के साथ ये भाग्य बनाने का मौसम है। जितना बना सकते हो गुप्त रीति से बना लो, सब सिद्धियां बाबा आपको दे देगा। सिद्धि दाता है, वरदाता है, भाग्य विधाता है। हम सब बाबा से जो चाहें वो संगम पर ले सकते हैं, लेकिन विधियों को छोड़ करके नहीं। तो हिम्मत के आधार से मदद मिलेगी, सच्चाई के आधार से भगवान प्रसन्न हो जाएगा, निश्चय के आधार से निश्चिंत स्थिति बन जाएगी। और अगर बहुत विघ्न आते हैं तो अपनी लगन को चेक कर लेना, सब विघ्नों को हरने वाली लगन है। अगर लगन लग गई तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता, कोई भी रुकावट नहीं रह सकती। तो इसलिए विघ्नों को पार करने के लिए बाबा में, परिवार में, पढ़ाई में बहुत लगन, प्यार चाहिए सच्चा। ये सब विधियां अपनाते चलो, आपको सब सिद्धियां अपने आप पीछे पीछे आएंगी। ये जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसलिए अगर संगठन में सफलता प्राप्त करनी है, संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है, तो उसकी विधि है पूरे संगठन को एक करके चलाना है, तो उसकी विधि क्या है? बहुत फेथ चाहिए, विश्वास। अगर विश्वास रख करके हम चलते हैं, कई होते हैं विश्वासघात करने वाले, लेकिन दादियों ने इस संगठन को जो एक करके रखा, उसके पीछे उनकी विधि थी। उन्होंने छोटा हो, बड़ा हो, नया हो, पुराना हो, अपने फेथ को कभी डगमग नहीं किया। ये बाबा के बच्चे हैं, ये सच्चे हैं, ये ईमानदार हैं, और अगर नहीं है तो अपना भाग्य बनाएंगे, मेरा क्या ले जाएंगे? हमारी तरफ से सबके ऊपर बहुत फेथ है। उन्होंने फेथ रखा और दिल से सच्चा प्यार दिया, एक दूसरे की बात को सुना, समझा, तब संगठन एक होकर के आज इतनी सेवाएं कर रहा है। अगर हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं तो हमें हरेक आत्मा की विशेषता को देखना है और हरेक को बहुत फेथ की दृष्टि से देखना है। ये सच्चा और ईमानदार अपनी तरफ से, अगर वो है नीचे ऊपर कुछ करेगा तो वो अपना ही बिगाड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इतना फेथ रखा तब संगठन एक रहा। अगर सबकी ब्लेसिंग्स लेनी है तो क्या करना होगा? सबकी दुआएं मिले, परिवार भी दे, बाबा भी दे, बड़े भी दे, लौकिक भी दे, अलौकिक भी दे, तो उसकी विधि क्या है? बैलेंस, बहुत संतुलन में रह करके चलो। संतुलन नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। कई लोग न्यारे बनते हैं तो सन्यासी जैसे बन जाते हैं, और प्यारे बनते हैं तो गृहस्थी हो जाते हैं। ये बैलेंस चाहिए, जितना न्यारे उतना प्यारे। न्यारा देह मान से बनना है, परिवार से नहीं। अपने देह मान से, मयपन से न्यारे बनकर के, नम्रचित बनकर के रहो और सबको स्नेह सम्मान सहयोग देते हो, उनके प्यार को अनुभव करो और अपना प्यार लुटा दो। तो न्यारे और प्यारेपन का, कर्म और योग का, परमार्थ और व्यवहार का अगर बैलेंस बराबर है तो कभी भी स्थिति डगमग नहीं होगी, सबकी दुआएं मिलेंगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सदा संतुष्ट रहने हैं तो क्या करना होगा? बहुत सारी विधियां बाबा ने बताई। संतुष्ट रहने की विधि क्या है? कहते हैं हम तो संतुष्ट हैं, हैं, समझते हो हैं। लेकिन संतुष्ट उसको बाबा मानते हैं जो हर नियम मर्यादा में एक्यूरेट है, संयम पूर्वक चलने वाली आत्मा कह सकती है मैं संतुष्ट हूं। नियम तोड़ रहा है, मनमत से चल रहा है, कहे मैं संतुष्ट हूं, संतुष्ट नहीं कहा जाता। परिवार संतुष्ट रहता है रिगार्ड देने से, स्वयं की संतुष्टता है संयम में चलने से, और बाबा हमारा संतुष्ट तब होता है जब हमारे अंदर और बाहर सच्चाई और सफाई है। तो हम सब बाबा के बच्चे इन भिन्न भिन्न विधियों को सुने समझें, और रोज की मुरली के अंदर कम से कम आप 5 विधियां नोट करो। ये विधि है, ये उसकी सिद्धि है। इस विधि को अगर मैंने पकड़ लिया तो ये सिद्धि मेरे पीछे पीछे आएगी। पूछो नहीं, मेरा योग नहीं लगता, मुझे सफलता नहीं होता, मुझे खुशी नहीं होती, मुझे भारीपन लगता, किसी न किसी विधि का उल्लंघन है। और वो विधि बाबा ने मुरली में सुनाई है। अमृत वेले उठने की विधि है, मुरली सुनने की विधि है, भोजन करने की विधि है, नींद करने की विधि है। अगर नींद में स्वप्न बराबर इधर उधर के आ रहे हैं, कारण क्योंकि विधि पूर्वक योग करके अपना चार्ट बाबा को सुना करके हल्के हो करके नहीं सो रहे हो तो स्वप्न इधर उधर के आ रहे हैं, विचार गलत चल रहे हैं, नींद फिट रही है, विधि है। तो बाबा ने हर दिनचर्या के अमृत वेले से रात तक के लिए अपने ब्राह्मण बच्चों को भिन्न भिन्न विधियां बताई हैं, और जिस आत्मा ने दृढ़ता से उन विधियों को पालन किया है वो सिद्धि स्वरूप है, उसको सफलता पीछे पीछे आती है। तो आप सब बाबा के बच्चे सफलता मूर्त बने, सिद्धि स्वरूप बने, और विधियों को यथार्थ समझ करके उनको दृढ़ता से पालन करें। ठीक है, ओम शांति। अगर कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो 5 मिनट योग करके पूरा करते हैं। कुछ पूछना है किसी को? चलो कोई पूछने वाला, हाँ बोलो, भाई ने हाथ उठाया। बहुत अच्छा प्रश्न है, आगे जाने का चांस है नयों का, बहुत अच्छा चांस है। बाबा तो कहता है ऐसे बच्चे आएंगे जो राजा जनक की तरह 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे। चांस सबको है, लेकिन लेता कौन उसके ऊपर है, क्योंकि जब तक सीट डिक्लेयर नहीं किया है बाबा ने तब तक कोई भी आत्मा आकर के लास्ट आते भी फास्ट जा सकती है, लेकिन आते ही वो संपूर्ण समर्पण हो करके तान मान धन समय संकल्प श्वास को सफल करे तो फास्ट चला जाएगा। कई लोग बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना, कई हैं जो चलते चलते बहुत फास्ट आते आते जब पहुंचने वाले होते तो थक जाते, फां हो जाते, तो वो लाइन से बाहर हो जाएंगे, उनकी सीट उनको मिल जाएगी। अगर थक गए, मां 35-40 साल से चल रहा है कोई, लेकिन चलते चलते अब अंत समय में लगता है पता नहीं कि अब तक पहुंचेंगे, बाबा तो इतने समय से कहता विनाश होगा, होता तो है नहीं, और चलते चलते फां हो गया, थक गया, और दूसरा भी आया और रेस कर रहा है तो वो रुक गया, वो चल के फास्ट पहुंच गया। तो ऐसे कई आत्माएं आगे जाएंगी, उनको भी मार्जिन है जी। क्या बुक के लिए? बुक हमारी सबसे अच्छी अव्यक्त वाणियां ही हैं। 48 साल का प्रिंटेड मैटर हमारे पास है, हमने कोई साल छोड़ा नहीं, सब छपाई है और सब प्रिंटेड है। अगर आपको इंटरेस्ट है रोज बाबा की एक अव्यक्त मुरली पढ़ो, रात को सोने के समय, उसके पहले या बीच में कभी टाइम मिलता है, सबसे अच्छा मन को श्रेष्ठ चिंतन देने का खजाना केवल मुरली में है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। बाकी बुक्स तो हैं हमारी, आदि रत्नों की पढ़ो, दूसरी पढ़ो, उमंग उत्साह तो बढ़ता है, किसी को भी अनुभव को पढ़ते हैं दूसरों के तो सीखने को मिलता है, लेकिन अपने विचारों को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे अच्छा खजाना अव्यक्त मुरली है और किताबों में छपी हुई है। ठीक है, चलो 3 मिनट योग करके।